ये इस बात उस समय की है, ये महाराज जी बताते हैं कि करीब सन 38 की बात है, सन 38 की बात, सन 38 की घटना। तो कहते कि उस समय ये स्थिति थी, जहां इस समय खाक चौक है, सुदामा कुटी स्थान था नहीं, ये स्थिति थी कि संध्या के बाद मनुष्य मात्र का दर्शन नहीं होता, जंगल घोर जंगल, वो अगाध जमुना जी में जल भरा, दिन में भी कोई नहीं। वहां 2 रुपया जब देहली पर ठाकुर जी के देखे तो बड़ा आश्चर्य हुए। एक संत दामोदर दास जी बैठे थे, उनसे पूछा, दामोदर दास तुम द्वार पर बैठे थे, अभी कौन भीतर घुसा मंदिर में पैसा चढ़ा के गया? बोले महाराज यहां तो चिड़िया भी नहीं आई, यहां कौन आया? और 2 रुपया देखकर महाराज जी कहते मन में आया कि ये 2 रुपये तो कोई चढ़ाता ही नहीं, आज जमाना बहुत सस्ता जमाना। अंत में ये समझ में आया कि अभी ठाकुर जी से कह के गए थे ना कि तुम्हें अन्न का भोग लगाना हो तो अपनी व्यवस्था करो, हम तो गऊ का दूध और दही का भोग लगा के मस्त रहेंगे, भजन करेंगे। तो ठाकुर जी ने 2 रुपया दिए। महाराज कहते हैं कि वो 2 रुपये जब हम लेकर अनाज मंडी में गए तो 2 रुपया में हमारा कुठार ठाकुर जी का भर गया, जो आज तक खाली नहीं हुआ। कहते थे कि जब जरूरत पड़ती है तो खाली होने के पहले ही वस्तु आ जाती है। 2 रुपये में कुठार भरा है, कहते थे 2 रुपये में कुठार भरा, अब तक कुठार भरा। तो ये बात बिल्कुल पक्की है, ठाकुर जी वस्तुतः भक्तों का भरण पोषण कहते कहते ऐसा करो, तुम कुछ नहीं चाहिए तो हमको ही ले लो, अब हम ही तुम्हारी सेवा करेंगे। हम ठाकुर सेवा नहीं करते, ठाकुर जी हमारी सेवा करते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सद्देशा दिव पूतनापि सकुला त्वामेव देवा पिता यद्धामाथ सुहृत प्रियात्म तन्य प्राणाशयास्तत्कृते। इसलिए हे भगवान आप हमें हृदय से लगा लेंगे, ये बात बिल्कुल पक्की है। तब तक रागादिकों का भय है, तावत रागादयस्तेनाह तावत कारागृहम ग्रहम तावन मोहोंग्रि निगडा यावत कृष्ण न ते जनाह जनाह। हे भगवान जब तक यह जीव आपका नहीं बन जाता तब तक रागादिक चोर डकैत इसको परेशान करते हैं, तब तक उसका घर कारागार के तुल्य होता है, तब तक वह मोह की रस्सी में जकड़ा रहता है, जब तक वह आपके चरणों में समर्पण नहीं कर देता। आपके बन जाने के बाद सारी अविद्या छूट जाती है। हे भगवान अब हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्ण वृष्णि कुल पुष्कर जोष दायिन क्षमा निर्जर द्विज पशु दधि वृद्धि कारिन उद्धर्म सार्वहरक्षिति राक्षस शत्रु गाकल्प मार्क मरहन भगवन नमस्ते। हे भगवान मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्तुति करके श्री ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए हैं। यहाँ इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिपरिक्रम्य पादयो नत्वाभीष्टम जगत धाता स्वधाम प्रत्यपद्यतो। 3 परिक्रमा करके चरणों में प्रणाम करके चले गए। 3 परिक्रमा करनी चाहिए। एका चंड्या रवेह सप्त दुर्ग देवी की 1 परिक्रमा, सूर्य की 7 परिक्रमाएं और विष्णोह चतस्रह विष्णु की 4 परिक्रमाएं और विनायकस्तिस्रह गणेश जी की 3 परिक्रमा, लेकिन यहां ठाकुर जी की 3 परिक्रमाएं। क्यों? एक तो ब्रह्मा जी इतने विह्वल हो गए हैं कि उस विह्वलता में उन्हें गिनती गिनने का होश नहीं है। हमने 3 कर ली कि 4 कर ली ये उनको ध्यान नहीं है, इसलिए वो चले गए। दूसरा अर्थ ये है कि श्री ब्रह्मा जी ने कहा हे भगवान यह जो गोपगण है गोगण है गोपगण है इनके एकमात्र ईश आप ही गणेश हैं, इसलिए हे गणेश हम 4 परिक्रमा नहीं, गणेश की तो 3 परिक्रमा होती है। तो मानो ये ब्रज गोपी गोपी गण, गण माने समूह, गण माने समूह होता कि नहीं, गोगण वत्सगण गोपगण गोपी गण ये सब गण हैं और इनके ईश स्वामी प्राण वल्लभ प्राण प्रियतम आप हैं, इसलिए हे गणेश हम तो आपकी 3 ही परिक्रमा करेंगे। 3 परिक्रमा करके चले। विष्णोः एक प्रदक्षिणा हंति पुण्यम पुराकृतम, भगवान की एक प्रदक्षिणा पुण्य नष्ट कर देती। इसलिए कभी भी मंदिर में जाए तो या तो परिक्रमा बहुत शीघ्रता हो तो परिक्रमा न करे, और परिक्रमा करे तो कम से कम दो करे, एक कभी न करे, दो करे या चार करे, एक परिक्रमा न करे। एक हस्त प्रणामंच, एक हाथ से प्रणाम, हंति पुण्यम पुराकृतम। इसलिए भगवान को सदा हाथ जोड़ करके प्रणाम करना चाहिए और दो परिक्रमाएं करनी चाहिए। एक कोई सज्जन ने कहा कि हनुमान जी की कितनी परिक्रमा करना चाहिए, क्योंकि शिव अर्ध प्रदक्षिणा, शंकर जी की प्रदक्षिणा आधी है, पूरी नहीं है, अर्ध प्रदक्षिणा, क्योंकि प्रणालम नहीं उल्लंघ है, प्रणाल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। जलहरी जहां से जल जाता है उसको लांग कर आगे नहीं बच जाना चाहिए, क्योंकि वह सर्व तीर्थमयी होती है, तो उसका लांघने पर तीर्थों का तिरस्कार होता है। इसलिए शंकर जी की आधी प्रदक्षिणा है। तो कोई ने पूछा कि हनुमान जी की कितनी प्रदक्षिणा करनी चाहिए, हनुमान जी तो रुद्रावतार है, क्या इनकी आधी प्रदक्षिणा करनी चाहिए? तो इसके संबंध में यही भगवत कृपा से अनुभव होता है कि हनुमान जी कोई देवता नहीं, हनुमान जी तो श्री रघुनाथ जी का साक्षात भवन है। जासु हृदय आगार बसहीं राम सर चाप धर, प्रणवों पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहीं राम सर चाप धर। तो मंदिर की कितनी परिक्रमा होती है? चार होती है। इसलिए हनुमान जी भी श्री सीताराम जी का मंदिर है, भवन है, इसलिए इनकी एक परिक्रमा भी नहीं, तीन परिक्रमा भी नहीं, आधी परिक्रमा भी नहीं, इनकी भी सम संख्या में ही परिक्रमा करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात श्री युगल सरकार का निवास भूत है, मंदिर है। ए भगवान के भक्त की प्रदक्षिणा की महिमा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ब्रह्मा जी से भगवान ने वार्तालाप नहीं किया, क्यों नहीं किया वार्तालाप? भगवान की प्रत्येक क्रिया मंगलमयी है, भगवान बातचीत कर लेते तो ब्रह्मा जी का द्वितीय अवतार कलयुग में कैसे होता? बातचीत नहीं किया। क्यों बातचीत नहीं किया? इसलिए बातचीत नहीं की कि यह बात का पता चले कि भक्त और भगवान का संयोग जो कराता है वह श्रेष्ठ है, और भक्त और भगवान का वियोग कराने वाला मुझे प्रिय नहीं। तो एक वर्ष तक सखाओं का वियोग कराया, ग्वाल बछड़ों का वियोग कराया, इसलिए भगवान नाराज थे। ब्रह्मा जी ने सोचा हमने वियोग कराया तो अब हमें संयोग भी कराना चाहिए। वे ही ब्रह्मा जी एक अंश से कलयुग में श्री नाभा जी के नाम से प्रकट हुए। श्री नाभा जी को वैष्णवों ने ब्रह्मा जी का अवतार कहा है, और ये इन्होंने भक्तों की माला बनाई, और भक्तों की माला बना करके जब भगवान के कंठ में धारण कराई तो प्रियादासी वर्णन करते हैं, बैजयंती दाम भाववती अली नाभा नाम, वैजयंती दाम भाववती अली भाववती सखी नाभा नाम, पी के पहिराय वे को रची के बनाई है। रचपच के भक्त माला बनाई, और देख अति अभिराम श्याम मति ललचाइए, ठाकुर जी की मति ललचा गई, जुगल सरकार बैठे हैं दोनों की मति ललचा गई। प्रिया जी तो कह रही थी इसमें कुछ भक्त हमारे विशेष पक्षपाती हैं, ये माला हमको मिलनी चाहिए। ठाकुर जी कहते थे माला हमको मिलनी चाहिए। अब सखी एक क्या करे, बोले ऐसा करो जुगल सरकार आप दोनों विराजमान हो, दोनों को एक साथ धारण करा दे। तो धारी उर प्यारी प्रिया प्रीतम दोनों ने एक साथ भक्तों की माला को धारण कर लिया। धारी उर प्यारी क्यों करत नन्यारी, अहो देखो गति न्यारी धरी पायन को आई। देखो तो कैसी गति है, ये भक्तमाला चरणों में आ गई। भक्तमाल भगवान को अतिशय प्रिय है। आप लोग श्री अवध गए हैं, अवध में कनक भवन है जो श्री युगल सरकार का नित्य महल है। ये कनक भवन विश्वकर्मा ने बनाया था, इंद्र ने बनवाया था दशरथ जी की प्रसन्नता के लिए। किसके लिए? दशरथ और केकई के लिए। केकई के लिए दशरथ जी ने विश्वकर्मा के द्वारा ये महल बनवाया था। और इसके बाद जब किशोरी जी आई हैं बहू बनकर के, तो मुख दिखाई, बहू की मुख दिखाई दी जाती कि नहीं? तो बहू की मुख दिखाई में सुमित्रा जी ने तो लक्ष्मण जी को दे दिया, बोले हमारे पास और कोई चीज नहीं है, ये मुख दिखाई में लक्ष्मण जी को सेवक के रूप में दे दिया। और केकई जी ने मुख दिखाई में कनक भवन दे दिया, बोले दोनों जुगल सरकार दुल्हा दुल्हन इसी में विहार करो, इसी में विराज। कौशल्या जी से कहा कि आप तो माता हैं, आप मुख दिखाई में दें, तो वे व्याकुल हो गईं, बोले सिया जैसी बहू को मुख दिखाई में क्या दें? तो राम जी का हाथ पकड़ के, किशोरी बहू रानी तुम्हारी मुख दिखाई में राम जी तुमको हमने दे दिए। ये बड़ी रसमयी लीला है। तो कनक भवन में ठाकुर जी, बड़े प्यारे ठाकुर जी विराजमान हैं, रसिकों के साथ बहुत लाड़ लड़ाया है इन ठाकुर जी ने, और आज भी इन ठाकुर जी की विलक्षण लीलाएं होती रहती, विलक्षण लीला आज भी कनक भवन के ठाकुर जी बहुत रसकों ने बहुत लाड़ लड़ाया। तो इनका जो शयन कुंज है ऊपर, उस शयन कुंज में भक्तमाल जी विराजमान है। क्यों? कहते एक बार ऐसी घटना घटी, ठाकुर जी को पुजारी ने शयन करा दिया और ठाकुर जी सो नहीं रहे थे, तो पुजारी रसिक थे, उन्होंने कहा प्रभु आप सो क्यों नहीं रहे? क्योंकि शयन कराने के बाद फिर मानसी में ध्यान करते हैं ठाकुर जी सोए, तो वो गए बोले ठाकुर जी आप सोए क्यों नहीं? तो ठाकुर जी बोले कि बिना भक्तमाल के हमको नींद नहीं आती, कुंज में भक्तमाल पधराओ। तो कुंज में भक्तमाल, शयन के आसन पर भक्तमाल विराजमान है। कभी प्रिया जी एक चरित्र सुनाती है तो कभी सरकार एक चरित्र सुनाते हैं, और किसी न किसी भक्त चरित्र को सुनकर के ही ठाकुर जी शयन करते हैं। आज भी वहां भक्तमाल विराजमान। श्री प्रियादास जी महाराज ने कथा कही गोविंद देव जयपुर में, प्रियादास जी नहीं, प्रियादास जी के नाती चेला वैष्णव दास जी कथा कही गोविंद देव जी, और कथा कह के फिर रामत के लिए चले गए। लौट के आए तो श्रोताओं से पूछा कि कहां तक भक्तमाल की कथा हुई थी। श्रोता तो बेचारे श्रोता ही होते हैं, उनको थोड़ी इतना ध्यान से वे सुनते हैं, सब चुप हो गए। तो श्री वैष्णव दास जी बोले कि जब कोई कथा नहीं सुना, किसी को इतना ही होश नहीं है कि कथा कहां तक हुई थी, तो ऐसे रसहीन श्रोताओं को हम भक्तमाल की कथा नहीं सुनाते। उन्होंने पोथी को बंद किया। तो भगवान गोविंद देव जी हुंकार करने लगे और कहा, राधा रमन पुजारी का नाम था, पुजारी से कहा, राधा रमन पुजारी जी जाकर के महाराज जी से कहो कि इन लोगों ने नहीं सुनी कथा, तो हमने तो सुनी है, रैदास जी का चरित्र हो चुका है, अब रैदास जी के चरित्र से आगे की कथा सुनते। भक्त चरित्र के श्रोता भगवान है। और देखिए, ये एकाध किसी ने हमसे कहा कि आप वर्तमान काल के संतों के बहुत से उदाहरण देते हैं, नाम सुनाते हैं, सत्य घटनाएं जो घटी भई है उनको सुनाते हैं, कथा आपकी पीछे रह जाती है। देखो, कथा से जो साधन की प्रेरणा मिलेगी, उससे भी अधिक प्रेरणा उन संतों से मिलती है जो वर्तमान काल में भजन करके और जो आगे बढ़ रहे हैं, उनसे एक बल मिलता है साधन का, विश्वास होता है, आगे की गति होती है। और भक्त चरित्र भगवान को अतिशय प्रिय है, इसलिए भजन के मार्ग में लगे रहने वालों को संत चरित्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए, भक्त चरित्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए। बस बात इतनी है कि ये भक्त चरित्र के प्रधान श्रोता ठाकुर जी हैं। कुछ अति भक्ति के चरित्र हैं, वो चरित्र सामान्य जीव पचा नहीं सकते, इसके लिए कुछ उसमें मर्यादा भी है, लेकिन आगे भक्तमाल का जब आस्वादन करेगा तो वह परिपक्वता उसे प्राप्त हो जाएगी, और जब वह परिपक्वता उसे प्राप्त हो जाएगी तब भक्ति महारानी का स्वरूप समझ में आएगा। प्रियादासी ने तो कहा, बिना भक्तमाल भक्ति रूप अति, बिना भक्तमाल के भक्ति का स्वरूप दूर नहीं, अति दूर है। भक्तमाल का तात्पर्य केवल भक्तमाल ग्रंथ से ही हम नहीं दे रहे, भक्त चरित्र से, गीता प्रेस से भी बहुत से भक्त चरित्र प्रकाशित हैं, संतवाणी अंक प्रकाशित है, भक्त चरितांक प्रकाशित है, और भी छोटी छोटी भक्त महिलाओं की, भक्त बालकों की, भक्तों के चरित्र प्रकाशित हैं। तो इन भक्त चरित्रों को अवश्य ही लेना चाहिए, संग्रह करना चाहिए, और नित्य सत्संग के क्रम में इनको पढ़ना चाहिए, इनसे बहुत बड़ा बल मिलता है। और नाभा गोस्वामी कृत भक्तमाल ही एक अपूर्व ग्रंथ है, क्योंकि इसमें एक संत का अनुभव है, उन संत के शब्द हैं, उनकी वाणी है, जो विशेष भगवत प्रेम को जागृत करने वाली है, ऐसा विचार करके भक्तमाल ग्रंथ का आश्रय लेना चाहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। अब जो असली ग्वाल बाल थे उन्होंने आकर के अघासुर उद्धार की लीला अपने घरों में आकर के सुनाई। श्री शुकदेव जी वर्णन करते हैं, एवं बिहारैः कौमारैः कौमारं जहतुर्व्रजे नीलायनैः सेतुबन्धैः मर्कटोत्प्लवनादिभि। एक दिन प्रातः काल की बेला में ठाकुर जी रोएवे लग गए। बाबा ने मैया ने बहुत समझाया, ठाकुर जी रोना बंद नहीं कर रहे थे। एक ही हट किए थे कि अब मैं बड़ो है चुको हूं, अब वो बछड़ा चराए वे में लाज आवे, अब मैं खूब माखन खाए खाए के मोटो है गयो हूं, अब मैं गैया चराऊंगा। बाबा मैया कह रहे थे, कन्हैया अभी तेरे नेक नेक से हाथ पाम है और तू 1200 छोटो सो लाला है। भगवान की उम्र कितनी है? 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश हुआ, 5 साल के पूरे भय हैं। 6ठे वर्ष की आयु में प्रवेश हो गया। ठाकुर जी कहते कि मैं बहुत बड़ो है चुको हूं, अब वो बछड़ा चराए में लाज आ रहे, मैं गैया चराऊंगा। बाबा समझा रहे थे, मैया समझा रही थी, ठाकुर जी मान नहीं रहे थे। अंत में बाबा ने ठाकुर जी को बहकाने का प्रयत्न किया, बोले देखो ऐसा है कि हम लोग बिना पुरोहित जी की आज्ञा के कोई काम नहीं करते। पुरोहित जी शांडली जी आएंगे, वे गोचारण का मुहूर्त देखेंगे और तब तुम गोचारण करना। ये कही रहे थे तब तक शांडली जी आ गए भगवान के संकल्प से। बोले भैया ये तो बड़ो, हम तो सोचते थे कि बुलावे जाएंगे तब आवेंगे, ये पहली आ गए। और बोले कि कन्हैया कैसे रो रहे हो? तो सारी बात बताई कि तो गोचारण के लिए हट कर रहे हैं। तुरंत उन्होंने पंचांग देखा, बोले वाह कन्हैया तो मुहूर्त देख के रोया है, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है, गोपाष्टमी, आज से उत्तम गोचारण का कोई दूसरा मुहूर्त नहीं। गो माता का पूजन तो हो ही रहा है, आज ही गैया चरवाओ। अरे नंद बाबा बोले कि पुरोहित जी और श्री कृष्ण की लगता पुरानी कोई 60 गांठ है, पहली निश्चय करके आए, हम रोवेंगे और तुम आकर मुहूर्त बताना। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी के भक्तों की 60 गांठ रहती भी है, ये भी बात है। एक दूसरे के सारे पर ही काम करते हैं, लीला करते हैं। श्री ठाकुर जी ने गोचारण किया। श्री डोंगरे जी के मुख से एक भाव हमने सुना था, कहते कि मैया ने ठाकुर जी के सामने बढ़िया सुंदर मखमली जूती रख दी, कह लो कन्हैया इन्हें पहनो और गैया चराए भी जाओ। ठाकुर जी बोले कि मैया गऊ माता हमारी इष्ट देवता है और इष्ट की पूजा जूता चप्पल पहन के नहीं होती, ये हमारी इष्ट देवता है, मैं इनकी सेवा करूंगा नंगे पाम। मैया बोली तेरे पामन में कांटे कंकड़ लग जाएंगे। ठाकुर जी बोले कि इन गैयन के पामन में ही लगेंगे, यदि तू हमें जूती पहराए वो चाहे तो हमारी सबरी गैयन को पहले बढ़िया बढ़िया जूती बनवा और सबको जूती पहरा तब हम जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे, जूता नहीं पहनेंगे नहीं तो। मैया बोली कि कन्हैया गाय तो पशु होए, वे कहूं जूता पहरे, जूता तो मनुष्य पहरे, पशु कहीं जूता पहरे, गाय तो पशु होए। इतना सुनते ही ठाकुर जी ने श्रृंगार बिगाड़ लिया और ठाकुर जी भूमि पर लौट कर रोने लग गए, हमारी इष्ट देवता को पशु क्यों कहा। इस प्रकरण को कहके डोंगरी जी एकदम गदगद विह्वल हो जाते, कहते थे हमारी इष्ट देवता को पशु क्यों कहा। बाल कृष्ण रोए वे लग गए ठाकुर, इतना रोए कि मैया ने कान पकड़ के कहा कि आज के बाद गऊ को पशु नहीं कहूंगी, गाय पशु की आकृति में है किंतु गाय पशु नहीं है, गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। बोलो गऊ माता की। भगवान ने गोचारण किया है, गाय के आगे आगे नहीं चलते, गाय के पीछे चलते हैं। गोचरण रज हमारे ऊपर पड़ जाए और मैं कृतकृत्य हो जाऊं। गाय घास चर के जब संतुष्ट हो जाती है तब भगवान छाक आरोपते हैं, गायों को यमुना जल पिलाने के बाद ठाकुर जी जल पीते हैं। इस प्रकार से भगवान ने गोचारण किया है। एक दिन की बात है, भगवान गोचारण करते करते काली हृदय में पहुंच गए हैं। गायों ने बालकों ने विषैला जल पिया, सबकी मृत्यु हो गई। भगवान तो समर्थ हैं, जो त्रिभुवनसक मारी जियाई, सबको मार करके जीवित रखने में भगवान समर्थ हैं। भगवान ने संकल्प किया, वे सब जीवित हो गए। और भगवान ने यमुना को विषसे मुक्त करने का संकल्प किया। गेंद को भगवान ने यमुना जी में उछाल दिया, श्री दामा की गेंद थी, श्री दामा ने फेंट पकड़ ली और कहा, कन्हैया तेने हमारी गेंद डाल दी यमुना में, हमारी गेंद लाए। ठाकुर जी कदम्ब वृक्ष पर चढ़ गए हैं और जल में कूद पड़े हैं, सीधे काली नाग के निकट पहुंचे हैं और पहुंच करके भगवान ने पैर की ठोकर से काली नाग को जगाया है, उससे भयंकर युद्ध किया है। काली ने भगवान को अपने चंगुल में जकड़ लिया है, भगवान ने अपने स्वरूप को बढ़ाया है, इसकी नस नस ढीली हो गई, व्याकुल होकर भगवान को छोड़ दिया। भगवान इसके फणों पर चढ़ गए और नृत्य करने लगे हैं। इंद्र ने वाद्य बजाया है, मृदंग बजाया है, नारद जी ने वीणा बजाई है और शंकर जी डमरू बजा रहे हैं। बड़ी सुंदर भगवान की शोभा हो रही है और आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा देवता कर रहे हैं। आज भगवान ने तांडव नृत्य किया, जो जो फण काली उठाता है भगवान अपने चरण की ठोकर से उसको विदीर्ण कर देते हैं। भगवान को काली के फणों पर नृत्य करते हुए देख करके ब्रजवासी बड़े प्रसन्न भये हैं, सबका दुख दूर हो गया है। तांडव गति मुंडन पर नरतित बन माली, तांडव गति मुंडन पर नरतित बन माली, पम 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 पग पटकत फम 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 फनन ऊपर, बिम 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 बिनति करत नाग बधू आली, तांडव गति मुंडन पर नरतित बन माली। सूरदास जी का पद है, सूरदास जी ने तांडव गति मुंडन पर नर्तित बनमाली कहकर के भगवान के नृत्य का वर्णन किया है। आज भोले बाबा महादेव जी तो न्योछावर हो गए और श्री भोले बाबा तो कहवे लग गए, हे नाथ तांडव नृत्य करते करते युग बीत गए, लेकिन वाह धन्य है आज आपने तांडव नृत्य किया है, इस पर मैं बलिहारी जाऊं, मेरा सर्वस्व आपकी इस नृत्य की एक एक झांकी पर न्योछावर है। विस्मित हो गए हैं शंकर जी और अब नाग पत्नियां व्याकुल भई हैं, उन्होंने भगवान की स्तुति किया है और कहा, पति प्राण प्रदीयताम, हमारे पति के प्राण हमें दे दें। भगवान ने प्रसन्न होकर के उन नाग पत्नियों की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और अब काली नाग ने भी भगवान की स्तुति की है। काली नाग की स्तुति भागवत की बड़ी छोटी स्तुति है, और छोटी क्या, स्तुति की बात तो बहुत कम है, अपनी बात इसने ज्यादा कही, लेकिन इसके बाद भी भगवान इसकी स्तुति पर प्रसन्न हो गए। क्यों प्रसन्न हो गए? इसलिए प्रसन्न हो गए कि भगवान शब्दों की भाषा कम पढ़ते हैं, कम समझते हैं, हृदय की भाषा भाव की भाषा को ठाकुर जी ज्यादा स्वीकार करते हैं। काली नाग के शब्दों में बनावटीपन नहीं है, शब्दाडंबर नहीं है, शब्दालंकार नहीं है, पंडिताई नहीं है, सीधे साधे शब्दों में भगवान की स्तुति कर रहा है। भगवान प्रसन्न हो गए। काली नाग कहता है, काली उवाचो, बयंखला सहोत्पत्या तामसा दीर्घ मन्यवः स्वभावो दुष्टजो नाथ लोकानाम यद सद्रह। हे भगवान, हम तो खल हैं, बयंखला, दो तरह के दुष्ट होते हैं। एक दुष्ट तो ऐसे होते हैं कि दुष्ट का संग पाकर दुष्ट बन गए, और एक दुष्ट ऐसे होते हैं जो जन्मजात होते हैं। तो काली नाग बोला कि महाराज, जन्मजात वाले दुष्ट ज्यादा खराब होते हैं, हम तो जन्मजात दुष्ट हैं, हम सज्जन नहीं है, हम संत नहीं है जो आपकी कृपा के अधिकारी हो, हम तो जन्मजात दुष्ट हैं। बयंखला सहोत्पत्या तामसा, बड़े तमोगुणी है, सात्विक प्राणी नहीं है। दीर्घ मन्यवः, बहुत लंबे समय तक बैर का बदला लेना नहीं भूलते, आप बैर की भावना रखने वाले को कब प्रसन्न नहीं रहते, वो हमारे हृदय में बैर बदला लेने की भावना ही कूट कूट के भरी हुई है, हम तो ऐसे हैं महाराज। और हे भगवान, ये स्वभाव दुस्त्यज है, इस स्वभाव के कारण ही जीव संस्कृति के चक्र में पड़ा है। हे भगवान, हम स्वभाव नहीं छोड़ सकते। क्यों? बोले संत पुरुष अपने दुष्ट स्वभाव पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हम तो जन्मजात दुष्ट हैं। तो अब जो जन्मजात दुष्ट हो वो अपनी दुष्टता कैसे छोड़े? हमारे खून में दुष्टता भरी भई है, मैं दुष्टता नहीं छोड़ सकता। और भगवान इसके लिए हमें कोई ग्लानि भी नहीं है। आश्चर्य कहता है इसके लिए हमें कोई ग्लानि नहीं है। इसलिए ग्लानि नहीं है कि आपके द्वारा ये जगत बनाया गया, हमने तो संसार बनाया नहीं, संसार बनाया आपने। तो आपने बनाया तो अपनी इच्छा से बनाया, हमारी इच्छा से तो बनाया नहीं। आपने अपनी इच्छा से अपनी प्रसन्नता के लिए आपने जगत बनाया है, तो जो वस्तु वहां जहां आपने रखी है वह वस्तु वहीं रहेगी। जैसे कोई पंसारी अपनी दुकान में कहीं हल्दी रख ले, कहीं मिर्च रख ले, कहीं कोई धनिया रख ले, कहीं मिर्च रख ले, और जहां जिस खाने में हाथ डालेगा वही वस्तु उसे मिलेगी। ऐसे ही ये सारा जगत आपकी दुकान है। कहीं साधुता रखी, कहीं दुष्टता रखा था, विष भरा था, हमने सब विष आपके चरणों में भेंट कर दिया। आपने हमको तमोगुण दिया था, हमने सारा तमोगुण आपके चरणों में चढ़ा दिया। हे भगवान, अब हम कहां से अमृत लाएं? हम तो विषैले। तो इसमें हमारा दोष नहीं है, ये तो आपकी लीला है। जो वस्तु हमको दी थी वो वस्तु हमने आपको दे दी। भगवान मुस्कुराने लग गए और भगवान से ये बोला कि महाराज, बड़े बड़े मुनि लोग आपकी माया को नहीं जीत सकते, हम तो तमोगुणी व्यक्ति, हम कैसे आपकी माया को जीत जाएंगे। अंत में तो स्पष्ट कह दिया, भवान ही कारणम तत्र, मैं इसमें कारण नहीं हूं, आप ही कारण है। जगत के कारण भी आप हैं, स्वभाव के कारण भी आप हैं, प्रकृति और पुरुष के कारण भी आप ही हैं। जब सबके कारण आप हैं तो हमारे दोष गुण दोष के कारण आप क्यों नहीं? सब आप ही हैं, हम अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। बहुत चतुर भगत था भाई। भवान ही कारणम तत्र, आप ही इसमें कारण है, मैं इसमें कारण नहीं। और हे भगवान, आप यह भी नहीं कह सकते कि मैं केवल भक्तों का स्वामी हूँ, शरणागतों का स्वामी हूँ, धनों का स्वामी हूँ, संत महात्माओं का स्वामी हूँ। आप यह नहीं कह सकते, क्योंकि यदि आप यह कहेंगे जगदीश्वरा, आप तो जगत के ईश्वर हैं, और जगत में दुष्ट भी हैं, सज्जन भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, तो या तो आप ये कह दो कि हम जगदीश्वर नहीं हैं, ये आप कह नहीं सकते, क्योंकि आप हो जगदीश्वर, आप जगन्नाथ हो। तो जगत में तो हम जैसे दुष्ट भी हैं, हमारे भी नाथ आप हो। हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके हैं, और भले से भले हैं तो भी आपके ही हैं। जो हम भले बुरे सो तेरे, जो हम बुरे भले सो तेरे, हम जैसे हैं आपके हैं। हे भगवान, इसलिए हम प्रार्थना भी नहीं करते कि आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। क्यों? कहते अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद्विधेहिना, हमने अपने ऊपर कुछ नहीं रखा है, आप चाहो तो हमारे ऊपर कृपा करो, हो आप चाहो तो हमें दंड दो, आपकी जो इच्छा हो सो करो, हमने अपनी बात बता दी कि हम आपके हैं। बस यही बात बता दो भगवान को कि अब जीवन में जो कुछ करना है वो आप करो, सब ठेका आपको। जब सौंप दिया सब भार तुम्हें, फिर मारो या तारो कहें हम क्या। जब सर्वस्व निवेदन कर दिया तो अब क्या बाकी बच गया? अब कुछ नहीं रह गया। हे नाथ, आप हमारे हैं, हम बुरे से बुरे हैं तो भी आपके ही हैं, ओ भले से भले हैं तो भी आपके हैं। अब आपकी जो मर्जी आवे सो करो, आप जिसमें प्रसन्न हो सो करें। यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर की जय सोई। ये संपूर्ण प्रपत्ति है, आप जिसमें प्रसन्न हो सो आप हमारे साथ हैं। भगवान इस भाव से प्रसन्न हो गए। देखो इस स्तुति में अपनी अपनी बात कहता रहा, भगवान की बात नहीं कही इसमें, अपनी अपनी बात पूरी स्तुति में कहता रहा, लेकिन अंतिम में इसने जो वाक्य कहा कि आप जगत के ईश्वर हैं तो मेरे भी ईश्वर हैं, और आपकी जो मर्जी आवे सो करो, बस हम आपके हैं, बस इतना सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। इसका तात्पर्य केवल भगवान यह सुनकर ही राजी होते हैं कि अब हम संसार के नहीं हैं, हे नाथ हम आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आप ही हमारे थे, आप ही हमारे हैं और आप ही हमारे रहेंगे। इसलिए भगवान अब सर्वस्व आपके चरणों में न्योछावर है, आप जो चाहें सो करें। प्रपत्ति का लक्षण क्या है? आचार्यों ने प्रपत्ति का लक्षण बताया, अचितवत पारे तंत्र में प्रपत्ति ही। अचेतन पदार्थ के समान भगवत भागवत पार तंत्र को अंगीकार करना, यही है शरणागति, यही है प्रपत्ति। चेतन बनकर शरणागति नहीं है। इसका तात्पर्य कि जैसे ये चद्दर है, और चद्दर हमारे पास है, इसको हम कमर में लपेट ले तो ये नहीं कहेगा कि अरे भाई हमको कमर में क्यों लपेटते, कंधे पे डालें तो ये नहीं कहेगा कि हमको कंधे पे क्यों डाले, मत्था बांध लें तो इसको कोई अभिमान नहीं, क्योंकि यह उपभोक्ता के अधीन है। ऐसे ही भगवान भोक्ता है और हम भगवान के भोग्य हैं, भगवान के सब प्रकार से अधीन हैं। ये जैसे चाहें वैसे हमारा उपयोग कर लें। फिर शरणागत को अपने संबंध में चिंता का भी अधिकार नहीं है, क्या करेंगे क्या होगा, इसका मतलब शरणागति कुछ नहीं। जो आप करेंगे सो होगा, जो आपकी खुशी होगी सो होगा, हम क्यों सोचें, हमें तो केवल आपकी ओर देखना है, आपका स्मरण करना है, आपकी कथा सुननी है, आपका नाम लेना है, बस इतनी कृपा बनी रहे, आप में अपनापन बना रहे और अब जो कुछ करना है सो आपको करना है, हमें कुछ नहीं करना है। इसी को प्रपत्ति कहते, शरणागति कहते हैं। भगवान इसके ऊपर प्रसन्न हो गए और भगवान ने कहा कि कालिए तुम यहां से चले जाओ, हमारी इस लीला का स्मरण जो करेंगे, तुम्हारे हमारे संवाद का स्मरण करेंगे, उनको नागों से भय नहीं रह जाएगा, तुम यहां से अपने निज निवास स्थान रमणक द्वीप चले जाओ। यह रमणक द्वीप की ओर चल पड़ा। ब्रज में एक कथा और प्रसिद्ध है, वो ये है कि जब ये रमणक द्वीप की ओर जाने लग गया और भगवान ने इसे आश्वासन दे दिया कि अब गरुड़ जी से भय नहीं है, क्योंकि मेरे चरण का चिन्ह तेरे मस्तक के ऊपर पड़ गया है, बन गया है, अब गरुड़ जी से तुम्हें भय नहीं। लेकिन भगवान ने एक बात और कही इससे, देखो तू जाए तो रहो है पर पीछे मुड़ के मत देखिए, पीछे मुड़ के देखेगो तो पत्थर को बन जाए। ये ब्रज की एक लोक कथा प्रसिद्ध है। काली चलते चलते जैत गांव तक पहुंचा, दूर नहीं है जैत, वृंदावन से ज्यादा दूर नहीं है जैत गांव, जैत गांव पहुंचा है काली नाग। इसके मन में आया कि चलते चलते ठाकुर जी की एक झांकी तो ले ही गई, भूल गया आ गया, तो जैसे ही मुड़के उसने देखा पत्थर का बन गया। आज भी जैत गांव में एक पत्थर की काली नाग की मूर्ति है, तो लोग कहते हैं कि काली नाग पत्थर को है गयो, क्योंकि अपने रूप में रहता तो इसके विषय से बहुत ब्रजवासियों को कष्ट था और इसकी थी ब्रजवास की इच्छा, तो ठाकुर जी ने पाषाण विग्रह के रूप में इसकी ब्रजवास की इच्छा पूर्ण की। ये ब्रज ऐसा प्रदेश है, ऐसी चुंबकीय शक्ति है ब्रज रज में, ब्रज की भूमि में, के सज्जन की बात को छोड़ दो, दुष्ट से दुष्ट भी ब्रज में पहुंच जाए तो उसकी भी इच्छा ब्रज से बाहर जाने की नहीं होती। और हरिराम व्यास जी ने तो यहां तक कहा है कि वृंदावन से बाहर जाने की जिसकी इच्छा हो, वृंदावन तज अनत पांव धरे, वृंदावन तज अनत पांव धरे, तासिर पन ही ठोक, उसके सिर पर जूती बजना चाहिए। वृंदावन के बाहर कह रहे थे उसके सिर पर जूती बजना चाहिए, जूती के योग वृंदावन आपके यहां भी प्रकट है, ऐसी ग्लानी न करें, जहां संत विराजमान है, ठाकुर जी विराजमान है, ठाकुर जी की निरंतर चर्चा हो रही है, वहां भी वृंदावन है, नित्य धाम है, भगवान व्यापक है तो भगवान का धाम भी व्यापक है, जहां भगवान की कथा होती है वहां वृंदावन प्रकट हो जाता है। लेकिन और अच्छा हो कि भौम धाम जो वृंदावन है उससे मन भी न जाए, चित्तन भी न जाए और शरीर भी वहां से बाहर जाए। धाम वृंदावन, एक महापुरुष थे वीणा बाबा, जिनका अभी उत्सव हो चुका है, बद्रीनारायण में उन्होंने बहुत भजन किया था, साक्षात देवर्षि नारद जी का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, उन्होंने स्वयं अपने श्रीमुख से दास को बताया।
कि हमें नारद जी का दर्शन और श्री गरुड़ जी का दर्शन बद्री नारायण में प्राप्त हुआ। बड़े अच्छे संत थे। दास को प्रारंभिक रूप में सितार के कुछ अलंकार बताए थे, इसके बाद तो वे भगवत धाम चले। वे एक बात कहते थे, विशेष रूप में कहते थे कि साधन भूमि उत्तराखंड, साधन का फल प्रेम है, प्रेम की बड़ा रहे, रज से संपर्क बना रहे तो भी उसका परम कल्याण है। ये साक्षात भगवान का दिव्य चिन्मय धाम है, ऐसी श्री धाम वृंदावन की दिव्य महिमा है। तो ठाकुर जी ने इसको भी ब्रजवास दिया, ऐसी कथा प्रसिद्ध है। दावानल आग लग गई और भगवान ने देखते देखते सबके अग्नि का पान कर लिया, क्योंकि मुखात अग्नि ही अजायत, तो भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई है। भांडीर बट पर ठाकुर जी क्रीड़ा कर रहे हैं, दो दल हो गए, एक दल दाऊ जी का और एक दल श्री कृष्ण का। दाऊ जी के दल में, श्री कृष्ण के दल में कंस का एक असुर सम्मिलित हो गया जिसका नाम था प्रलंबासुर। दो दल में खेल हो रहा था, शर्त यही लगाई गई कि जो दल हार जाएगा वो जीते हुए दल को पीठ पर बिठा करके भांडीर बट तक दौड़ लगाएगा। तो श्री कृष्ण का दल हार गया और दाऊ जी का दल जीत गया। अलग अलग जोड़ थी, दाऊ जी के दल में श्री दामा थे और दाऊ जी ने अपने दल में उनको ले लिया, तो श्री दामा और श्री कृष्ण की जोड़ी हो गई। अब श्री दामा जीत गया क्योंकि दाऊ जी के दल में है और श्री कृष्ण हार गए। श्री दामा बोलो चल घोड़ा बन। ठाकुर जी बोले कि तुम लाज ना आवे, तो एक बड़ो ग्वाल में इतनो कोमल छोटो सो बालक मेरे ऊपर बैठे गो। देखो खेल में कोई छोटो बड़ो नहीं, तो ये घोड़ा बनना ही पड़ेगो। वो बरबस भगवान की पीठ पर लद गया और ठाकुर जी श्री दामा को पीठ पर लेके छम छम करके भागे वहां। इधर ठाकुर जी के दल में प्रलंबासुर नाम का एक असुर आ गया था और ये दाऊ जी के साथ ये लड़ने लग गया था। दाऊ जी के साथ ये हार गया, इसने दाऊ जी को कंधे पर बिठाया और भांडीर बट तक तो दौड़ लगाई और भांडीर बट के आगे आकाश में उड़ गया। दाऊ जी ने विचार किया कि ये कैसा विचित्र ग्वाल जो आसमान में उड़ना जानता है। दाऊ जी को पहचानते देर नहीं लगी, समझ गए ये तो दुष्ट प्रलंबासुर है। एक घूंसा जमाया इसकी मस्तक पर, इसका मस्तक फट गया और दाऊ दादा ने इसे सदगति प्रदान की। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की। कुछ लोगों का कथन है कि भांडीर बट से दाऊ जी को लेके उड़ा तो पलवल पहुंच गया, दिल्ली के पहले पलवल है ना, तो वहीं घूंसा जमाया दाऊ जी ने, वहीं मरा है प्रलंबासुर, पलवल में जाकर के मरा। दाऊ जी पुनः लौट करके सखाओं के मध्य आ गए हैं। बड़ी सुंदर शोभा दाऊ जी की भई है। बोलो श्री दाऊ जी महाराज की जय। पापे प्रलंबे निहिते देवा परम निर्वृता अभ्यवर्षन बलम माल्य ससंसु साधु साधु की। देवताओं ने साधु साधु कहकर के प्रशंसा की है। मुंजवन में भगवान गोचारण करने गए हैं और इसी बीच आग लग गई। भगवान ने कहा नेत्र बंद करो, सबने नेत्र बंद किए और भगवान ने अग्नि का पान कर लिया। एक बार आंख खोलकर और एक बार आंख बंद करवाकर अग्नि का पान किया, इसका तात्पर्य क्या है? भगवान ने यह बताया कि कई बार तो भक्त को पता ही नहीं चलता, परोक्ष में उसके संकट को मैं पी जाता हूँ और कई बार भक्त के देखते देखते संकट को पी जाता हूँ। परोक्ष में भी और प्रत्यक्ष में भी मैं भक्त की विपत्ति का पान कर लेता हूँ। ये बताने के लिए भगवान ने एक बार आंख के सामने और एक बार आंख बंद करवा करके अग्नि का पान किया। दिव्य वर्षा होने लग गई और उस वर्षा को देख करके सबका हृदय आनंद में भर गया। भागवत जी का वर्षा ऋतु वर्णन और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस का वर्षा ऋतु वर्णन दोनों एक हैं। ऐसे लगता मानो गोस्वामी जी ने भागवत के वर्षा ऋतु वर्णन को मानस जी में यथावत विराजमान कर दिया हो। निशा मुखे न खद्योता तमसा भांति न ग्रहा यथा पापे न पाखंडा नहीं वेदा कलौ युगे। इसके संबंध में गोस्वामी जी ने कहा है दम्भिन निजमत कल्प कर प्रकट किए बहुपंथ जिम पाखंड वाद से लुप्त हुए सदग्रंथ।
गिरयो वर्षधाराश्च वर्षधाराविर हन्यमाना न विद्यथुहु अभिभूय माना व्यसनैर्यथा धोक्षज चेतसा। इस श्लोक का अर्थ गोस्वामी जी ने लिखा है, बूंद अघात सहें गिरी कैसे, खल के बचन संत सहें जैसे। बिल्कुल हुबहू अनुवाद है, इधर श्लोक पढ़ो उधर मानस जी में चौपाई पढ़ो, एक ही बात है। और बोले ये मेढक कैसे बोल रहे थे, कहते जैसे बटुक ब्रह्मचारी गण वे वेद पाठ मिलकर के करें, ऐसे ही मेढक के यह मेढक बेलने लग गए, ऐसी सुंदर इनकी शोभा हो गई। इस प्रकार से बड़ी सुंदर सुंदर उपमाएं दी हैं। वर्षा ऋतु को देख करके भगवान को अतिशय प्रसन्नता भई है, वर्षा ऋतु व्यतीत भई है और अब शरद ऋतु आई है, नदियों सरोवरों का जल स्वच्छ हो गया है और गोपियां भगवान के प्रेम में डूब करके वेणु गीत का वर्णन करती हैं। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम विव्रद वास कनक कपिशम वैजयंतीं च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। बड़ा सुंदर मयूर पक्ष का मुकुट है, नटवर बपु हैं, कर्णयो कर्णिकारम कानों में कर्णिकार का पुष्प है, सुंदर वैजयंती माला पीतांबर झिलमिला रहा है और भगवान अपने अधर पर वेणु पधरा करके बजा रहे हैं। अपनी मस्तक को कुछ बाएं कंधे की ओर झुका करके, थोड़ी को कुछ दाहिनी ओर मोड़ करके भगवान बड़े प्रेम से वेणु वादन कर रहे हैं और ग्वाल बाल भगवान की जय जयकार कर रहे हैं, कीर्ति का भगवान की गायन कर रहे हैं। वैकुंठ से भी मनोहर जो वृंदावन, जिसको ब्रह्म का निरावृत चरण कमल का स्पर्श प्राप्त है, ऐसे वृंदावन में भगवान विचरण कर रहे हैं। देखिए भगवान गोचारण करते हुए वंशी बजा रहे और गोपियां अपने घरों में बैठी हैं और वर्णन कैसे कर रही है, कल्पना वाला वर्णन नहीं है, वर्णन ऐसा हो रहा है कि प्रत्यक्ष आंखों देखा हाल सुना रही हो। गोपियां घरों में बैठी हैं, वे एक साथ झुंड के झुंड बनकर बैठी हैं और उनका प्रेम इतना अधिक भगवान में है कि उनके भावमय जो देह हैं वे भगवान के साथ गोचारण के लिए ही चले गए हैं और वे भगवान के साथ भावमय देह से सदा निकट रहती हैं और जब भगवान वेणु बजाते हैं तो उस वेणु का श्रवण करती हैं, झांकी का दर्शन करती हैं और अपने उन भावमय देहों से लीलाओं का वर्णन करती हैं और जो उन भावमय देहों से लीला का वर्णन होता है वह इस शरीर के माध्यम से प्रकट होने लग जाता है। ये कल्पना वाला ध्यान नहीं, प्रत्यक्ष अनुभव करके वे बोल रही हैं। गोप्यौचु अक्षणवताम फलमिदम न परम विदामः शक्यः पशु ननु विवेशयतोर्वयस्यै वक्त्रं व्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम् यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। अरी सखी अक्षणवताम आंख वालों का यही आंख मिलने का सबसे श्रेष्ठ फल है कि गैया चराते भय बंसी बजाते हुए श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। यदि इन नेत्रों से श्याम सुंदर का दर्शन नहीं हुआ तो ये नेत्र ही व्यर्थ हैं, क्योंकि इन आंखों का फल है श्री कृष्ण का दर्शन। यदि इन नेत्रों से भगवत दर्शन न हो तो ये नेत्र क्या हैं? एक भूत किसी के पीछे पड़ जाए उसकी क्या दशा होती है, मेहदीपुर बालाजी में जाके देखो, हनुमान जी की लीला तो कम लोग देखते हैं, हनुमान जी का दर्शन कम होता है, वो भूतों को नाचते कूदते देख करके ज्यादा मन में भय जैसा हो जाता है।
एक भूत पीछे पड़ जाए तो क्या दशा कर देता है, और दो दो भूत 2400 घंटे पीछे पड़े हों उस बेचारे की क्या दशा होती है। जिन नेत्रों से कृष्ण का दर्शन न हो वे आंख भूत हैं, पता नहीं किस मलमूत्र के भांड में अटक करके जीव का सर्वनाश कर देंगे, पता नहीं किस पतन के गर्त में डाल देंगे, किस नरक में ले जाएंगे ये भूत, नहीं कहा जा सकता। श्री प्रियादास जी ने अपनी वाणी में इनको भूत कहा, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए। विल्व मंगल जी भगवान से मिलने के लिए वृंदावन की ओर चले, चिंतामणि ने फटकार लगाई है, अरे विल्व मंगल तू बड़ो ही अमंगल है, तू विल्व मंगल नहीं अमंगल है, ऐसी प्रीति हमसे करता, ऐसी प्रीति श्री कृष्ण से करे तो तेरा कल्याण हो जाए। मैं तो भये भोर भजो जुगल किशोर, चिंतामणि ने कहा मैं तो जुगल किशोर का भजन करूंगी, अब तेरी तू ही जाने। ये सोमगिरी नाम के महापुरुष श्री कृष्ण प्रेम को प्राप्त करके वृंदावन की ओर चले हैं, तो बीच में आंखों के द्वारा फिर अटक गए, एक स्त्री के पीछे चल के उसके घर तक पहुंच गए, और उस गृहस्वामी ने आपका भी आदर किया क्योंकि संत का रूप है, और आपको ग्लानी होने लग गई, उसकी पत्नी सेवा में आई, बोले महाराज क्या सेवा करूं, दो सुई ले आओ, और जैसे ही दो सुई लेके आई कि अपने हाथों से ही अपने नेत्रों को फोड़ लिया, कहते ये भूत इन्होंने पहले हमको चिंतामणि में आसक्त किया, फिर यहां लाकर गिराया, ये श्री कृष्ण के लिए नहीं तड़पते हैं, ये नेत्र ही व्यर्थ हैं, दीर्घ भूत से छुड़ाए दिए, और आंख को जब फोड़ लिया तो श्री ठाकुर जी आ गए इनकी लकुट पकड़ने के लिए। बाबा सूरदास जी कहां जाओगे, बोले वृंदावन जाएंगे। लाला तू कहां से आयो, बोले मैं वृंदावन से आयो, वृंदावन को ग्वारिया हूं, यहां गैया चरानते भयो आयो, चलो बाबा वृंदावन, लाठी पकड़ के आगे आगे चल रहे हैं। अब तो समझ गए विल मंगल जी के ये अंधे की लाठी पकड़ने वाला गोपाल के अतिरिक्त कोई नहीं है, धीरे धीरे हाथ बढ़ाते बढ़ाते ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, बोले तुम मेरे कन्हैया हो, मैं नहीं छोड़ूंगा। ठाकुर जी बोले आजकल अंधों पर दया करना भी धर्म नहीं है, देखो हम तो तुम्हारी सहायता की तुम हमको पकड़ रहे हो, बोले अब छिपने वाले नहीं हो, अब तो हम पहचान गए थे। अच्छा ठीक है तुम पहचान गए तो मैं स्वीकार करता हूं, मैं तुम्हारा गोपाल हूं श्री कृष्ण हूं, पर तुम बरबस हमको पकड़ सकोगे, लो मैंने छुड़ा लिया, भगवान एक झटके में छुड़ा दिया। आपने कहा कोई बात नहीं, हस्तमुत्क्षिप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण किमद्भुतम् हृदयात् यदि निर्यासी पौरुषम गणयामि, हृदय से निकल के दिखाओ तो तुम्हारा पौरुष समझूंगा। नेत्र खोलकर भगवान ने इतना सुनते हृदय से लगा लिया और कहा आंख खोलो, बीच मझधार में हाथ छोड़ने का हमारा अभ्यास नहीं है, वृंदावन आकर ही हाथ छोड़ा है, बीच में हाथ नहीं छोड़ा है, हाथ तो पहले पकड़ लिया था, वृंदावन आए तब हाथ छोड़ा है, इसलिए अब मेरा दर्शन करो, दिव्य दृष्टि दी है आप, दर्शन करके भगवान ने कहा वरदान मांगो, कहते वरदान देना चाहते तो यहां फिर से फोड़ दीजिए, जिन्होंने आपका दर्शन कर लिया अब वे संसार के घृणित रूपों को देखें ये ठीक नहीं। ठाकुर जी ने कहा कि जो आंख हमें देख लेती है फिर उसकी आंख में संसार का रूप समाता है ही नहीं, देखी दे तब बालक दो अब न आंख तरियावत को। नंदन ये बालक दो कृष्ण बलदेव, जब आंखों से इनका दर्शन हो जाता तो फिर दूसरा बालक, फिर दूसरा कोई रूप आंख में समाता नहीं है। आंखों का सबसे श्रेष्ठ फल यही है, इनसे श्याम सुंदर का दर्शन हो। कैसा दर्शन, कहते वक्त्रम ब्रजेश सुतयो अनुवेणु जुष्टम, दाऊजी के गलवैया दिए हुए हैं, त्रिभंग ललित हैं, अधर पर बंसी रख के बजा रहे हैं, ऐसे श्याम सुंदर का दर्शन हो। और दूसरा अर्थ क्या है, ब्रजेश सुताच सुतश्च सुतयो, ब्रजेशो वृषभानु तस्य सुता वृषभानु ननी श्री राधा, और ब्रजेशो नंदा तस्य सुता नंद नंदन श्री कृष्ण, का तात्पर्य है कि वेणु वादन दो प्रकार से होता, कभी तो दाऊजी के गलवैया डाल के होता और कभी कभी बंसी बजाते बजाते निवृत्त निकुंज में चले जाते हैं, और जब निवृत्त निकुंज में चले जाते हैं तो प्रियाजी प्रकट हो जाती कुंज से। तो वक्त्रम ब्रजेश सुतयोह अनवेण जुष्टम, ठाकुर जी प्रियाजी के गलवाही दे लेते हैं और वेणु का एक छोर प्रियाजी के अधर पर होता है और एक भाग ठाकुर जी के अधर पर होता है। इधर नील करकमल इधर गौर करकमल ये दोनों मिलकर के वेणु के छिद्रों को दबाते हैं, दोनों एक साथ फूंकते अनुवेणु जुष्टम, युगल एक साथ वेणु वादन कर रहे हैं। और सहचरियां कहती हैं कि हम इन युगल छवि का वेणु वादन करते हुए दर्शन कर रहे हैं। ये दो प्रकार के अर्थ हैं, एक विशुद्ध माधुरी के अर्थ में सखियां प्रियाजी के साथ ठाकुर जी को बंसी बजाते हुए दर्शन करके आह्लाद का आनंद का अनुभव कर रही हैं। अरे सखी इन्होंने श्रृंगार कितना बढ़िया किया देखो तो सही। चूत प्रवाल वर हस्तव को तलाब्ज माला अनुप्रत परिधान विचित्र वेश मध्य विरेज तुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरौ क्वच गायमान। अरे सखी एक तो ये सहज सुंदर हैं, फिर मैया ने खूब सुंदर श्रृंगार किया है, फिर ग्वाल वालों ने सुंदर सुंदर शिलाओं को घिस करके विचित्र प्रकार की सुगंधित पुष्पों का शार बना करके और विचित्र पत्रावली की रचना श्रीअंग में की है, इसकी सुंदरता। फिर इन ग्वाल वालों ने कितना सजाया, चूतप प्रबाल आम की बौर, आम के जो बौर हैं उनसे लाल लाल पल्लवों से कमल के गुच्छे सुंदर सुंदर गूंथे हैं और घुंघराले केसों में रंग बिरंगे पुष्पों को गूंथा गया है। बड़ी सुंदर मालानुप्रत परिधान विचित्र वेश, मालानुप्रत मालाओं से लदे हुए हैं, माला कई तरह की माला, एक कंठ का पुष्पहार, फिर छाती के हार को चंद्रहार कहते हैं, फिर कटी तक पहुंचने वाले को कटिहार कहते हैं और चरण तक पहुंचने वाली जो माला है उसको कहते हैं वैजयंती। यहां तक पुष्पों से श्रृंगार है, पुष्पों के बाजू बंद हैं, बड़ी सुंदर इनकी शोभा हो रही है। परिधान विचित्र वेश, इतने विचित्र वेश हैं, कहते सखाओं ने बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों के ही पटका बनाए हैं, पुष्पों की ही पोशाक बनाई है, पुष्पों के ही मुकुट आदि बनाए हैं, उनसे बड़ी विचित्र इनकी शोभा लग रही है। ऐसे लगता है मानो यह ब्रजमंडल इनका लीला विलास मंच हो और ये दोनों नटवर हो। दो अर्थ हैं, नटवरऊ कृष्ण बलदेव अथवा नटवरऊ श्री राधिका कृष्ण, दोनों क्वच गायमान, बड़ी सुंदर इनकी शोभा हो जाती है। मध्ये विरे जतुरलम पशुपाल गोष्ठ्याम रंगे यथा नटवरऊ क्वच गायमान। तिरछी चितवन से हमारी ओर देख रहे हो और उस समय इनकी कैसी अद्भुत शोभा होती है। अरे सखी इस वेणु ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जो श्याम सुंदर के अधरों से सतत लगी रहती है, इसने कौन सा ऐसा पुण्य किया था। गोप्यः किमाचरदयम् कुशलम् स्म वेणुर् दामोदराधर सुधामपि गोपिकानाम् भुंते स्वयं यदवशिष्ट रसमृदिन्यो ऋष्यत्वचोश्रु मुमुचु स्तरवो यथार्या। यहां वेणु शब्द जो है वो पुल्लिंग है, इसका तात्पर्य है कि श्री कृष्ण का अधरामृत हम ब्रजांगनाओं का सर्वस्व है, जो हम ब्रजांगनाओं का सर्वस्व है उसे ये वेणु ले रहा है, अर्थात पुरुष जाति का इस पर अधिकार नहीं है, हम कांताओं का अधिकार है श्री कृष्ण के अधरासव पर, और उस अधरासव को ये पुरुष जाति का वेणु पी रहा है। इसका तात्पर्य है कि ये अनधिकार चेष्टा कर रहा है और जब यह अनधिकार चेष्टा कर रहा है ये अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है, इसे निश्चित ही दंड दिया जाना चाहिए। कोई कहता चोर लो, कोई कहता छीन लो, कोई कहता है कि इसको जमुना जी में बहा दो,
दूसरी गोपी कहती देखो ऐसा नहीं करना, क्यों श्री कृष्ण का एक स्वभाव है वे ईर्ष्यालु के ऊपर प्रसन्न नहीं होते, तो वेणु के सौभाग्य को सराहो, ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या करने से वे प्रसन्न नहीं होंगे प्रियतम। देखो इसका सौभाग्य कितना है, श्याम सुंदर इसे अपने अधरों का तकिया लगा देते हैं, इससे सुंदर तकिया कुछ होगा, अधरों का तकिया लगाते हैं और कर कमल का पलका बिछा देते हैं, कमल की शैया कर कमल पर विराजमान है ना, तो कर कमल का पलका बिछा देते हैं। और इतना ही नहीं, ये ठाट से अधर की तकिया लगा के पौड़ जाता है तब इसको वे मनाते हैं, कैसे पाद संवाहन के द्वारा छिद्र दबाते तो लगता है कि इसके चरण सेवा कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इसको अपने अधर सुधा रस का निरंतर भोग लगाते हैं, ये ज्यादा मद चढ़ गया है इसके ऊपर इसलिए पौड़ गया है, अब ये खड़ा नहीं होता, इतना सौभाग्य है इसका। गोपी कहती है सौभाग्य तो है लेकिन कम से कम कुछ हमारे लिए तो छोड़ दे, ये तो सारे अधरामृत को यही पी जाएगा, हमारे लिए बचने नहीं देगा, इसीलिए हमको इससे ईर्ष्या हो रही है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। भूंगते स्वयं भूंगते खुद भोग रहा है, हमारे लिए कुछ छोड़ेगा ही नहीं, सब कुछ पी जाएगा ये, इसी बात से हमको दुख हो रहा है। दूसरी सखी कहती देखो ये बांसुरी, इसको अधरामृत पीने से लाभ क्या है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, कभी हरी नहीं होती, सदा सूखी रहती, सदा पोली रहती है। अरे जब यह श्याम सुंदर अधरामृत से परिपूरित करते हैं इस वेणु को, और वेणु की स्वर लहरी जब प्रकट होती है तो हमारे चूल्हे में जलती हुई लकड़ियां गीली हो जाती हैं, उन सूखे काष्ठों में जलते हुए काष्ठों में रस का संचार हो जाता है। इसलिए गोपियों ने तो यहां तक कहा मुरहर रंधन समये माकुर मुरली रवम, तुम वेणु बजाओ लेकिन रोटी बनाते समय वेणु मत बजाओ, क्यों हमारे चूल्हे बुझ जाते हैं, चूल्हे में जलती हुई लकड़ियां रसयुक्त हो जाती हैं और सास ननद हमारे ऊपर अंकुश कसती हैं। कहती कैसी कुलक्षणा बहु आई, सबरे ते चूल्हे में मोहड़ो दियो है, दो रोटी सेक के नाए दीनी। अब रोटी कैसे बने, चूल्हा तो बुझ गया, रोटी कैसे बने, तो जब जलता हुआ काष्ठ हरा हो जाता उसमें रस का संचार हो जाता, तो ये तो साक्षात अधरामृत पीती है, इसको तो और अधिक हरा भरा हो जाना चाहिए, इसको कोई लाभ नहीं है इनके अधरामृत पीने का। दूसरी गोपी कहती है देखो यही तो विशेषता है इसमें, ये प्रेम को संगोपन करना जानती है, अपने में ही प्रेम को पचा लेती है, ये जो अपने में प्रेम को पचा लेते हैं श्याम सुंदर उनके ऊपर रीझ जाते हैं। सबसे पहली बात क्या है, ये पोली है भीतर से, भीतर इसने कुछ नहीं रखा है, जिनके भीतर कुछ नहीं होता उनको ये रस मिलता है, और तमाम कचड़ा काम क्रोध का विद्या का भरा हुआ है तो रस कैसे मिलेगा, इसने पहले अपने आप को खाली कर दिया, कुछ अपने भीतर रखा नहीं है, पोली हो गई, और इसके बाद यह रस को पचा जाती है, क्योंकि यदि यह रस को न पचावेगी तो यह हरी हो जाएगी, फिर तो बांस हो जाएगा, तो बांस का डंडा मानकर श्री कृष्ण इसको फेंक ही देंगे, फिर अधर सुधा रस पान का अवसर से नहीं मिलेगा, तो इसलिए यह अपने प्रेम को अपने भीतर पचा जाती है, अधर सुधा रस को पीने के बाद भी बाहर प्रकट नहीं होने देती है, सबको व्याकुल कर देती है लेकिन खुद व्याकुल नहीं होती, ऐसी जो बंसी है, इसीलिए तो श्याम सुंदर इसको अधरों से लगाते हैं। एक गोपी कहती और भी कारण है, क्या, बोले भगवान तितिक्षा से रीझते हैं, संत का सबसे पहला लक्षण क्या है, तितिक्षवक्तारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, इसमें तितिक्षा गुण विशेष है, बड़ी सहनशील है ये, बहुत सहनशील है ये वेणु, सबसे पहले तो गांव घर छोड़ के जंगल में पैदा हुआ, ठंडी गर्मी बरसात को सहन किया, फिर तेज धारदार हथियार से इसे काटा गया, फिर ऊपर से छीला गया, फिर गरम गरम लोहे से इसके कलेजे को छेद कर दिया गया, फिर ऊपर से छिद्र इसके किए गए,
इतनी यातना सहने के बाद भी इसने आह तक नहीं किया। इसकी तितिक्षा पर सखी रीझ गए हैं श्याम सुंदर, इसलिए इसको अपने अधर से लगाते हैं। गोपियां उपदेश भी कर रही हैं कि जिसमें ऐसी तितिक्षा हो उसे ठाकुर जी अपना रस प्रदान करते हैं, वह इस रस को प्राप्त करता है। हरी सखी, यह भले ही अपने में प्रभाव न दिखा रही हो, लेकिन इसके सौभाग्य को देखकर इसके जाति भाई जो प्रकृति के लता पता द्रुमबेली हैं अथवा सरोवरों में कमल हैं, ये खिल रहे हैं, लताएं खिल रही हैं, पुष्प खिल रहे हैं, ये यह बता रहे हैं कि निश्चित ही यह वेणु के सौभाग्य को देख करके यह ऐसे कर रहे हैं।